أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستو اور پریہ درشکوں, ہمارا آپ کو پیار بھرا سلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں احکام سے سمبندھت وشیوں پر بات چیت کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں نجاسہ سے سمبندھت کچھ مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کیا, آپ کو یہ بتایا کہ نجاسات کتنی پرکار کی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کچھ نجاسات کے بارے میں وسترت روپ سے بات چیت کی. جیسے کہ ہم نے آپ کو اسی پروگرام میں یہ بتایا کہ پیشاب پاخانہ یا مل موتر کس کا نجس ہوتا ہے, کس کا نجس نہیں ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں کیا کیا احکام ہیں. اور اسی پروگرام میں ہم نے بات چیت شروع کی تھی مردار کے بارے میں. ہم نے آپ کو اسی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ مردار کسے کہتے ہیں اور مردار سے سمبندھت مسئلے کیا ہیں. ہماری یہ بات چیت وہاں سے آرمبھ ہو کر اس استھان تک پہنچی تھی, اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے جو چمڑے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. ہم نے آپ کو اسی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی چیز حلال گوشت جانور سے بنی ہوئی ہو, حلال گوشت جانور کے چمڑے سے بنی ہوئی, جیسے کہ گائے کے چمڑے سے بنی ہوئی جیکٹ یا جوتے وغیرہ, تو کس اوستھا میں کیسے کیسے وہ پاک ہوگی اور جائز ہوگی. اس کے بعد ہم اسی مسئلے میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر گوشت کے بارے میں کیا مسئلہ ہے, وہ جو گوشت ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا مسئلے ہیں. تو تقریباً یہ مسئلہ اسی پرکار کا ہے جس پرکار کا مسئلہ چمڑے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر گوشت کے بارے میں دو اوستھائیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ اوستھا ہو سکتی ہے کہ جو گوشت لا رہا ہے, جس کے مادھیم سے ہم گوشت لے رہے ہیں, وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہوگا, اگر مسلمان نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہوگا. اگر گوشت جس سے ہم لے رہے ہیں وہ مسلمان ہے, اور اگر وہ گوشت مسلمان سے لینے کے ساتھ ساتھ اسلامی دیش میں تیار کیا گیا ہے, جیسے کہ ایران میں, سیریا میں وغیرہ وغیرہ, ان جیسے دیشوں میں جو اسلامی دیش ہیں جہاں اسلامی قانون لاگو ہے, ان دیشوں کے ذریعے سے اگر آیات کیا گیا گوشت ہے اور ایک مسلمان بیچ رہا ہے, تو وہ گوشت پاک ہے اور اس کو پریوگ کیا جا سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان دینے والا یا بیچنے والا تو مسلمان ہے, لیکن جس دیش سے آیات کیا گیا ہے وہ دیش اسلامی نہیں تھا, جیسے کہ جرمنی سے یا امریکہ سے یا کسی بھی ایسے دیش سے جس میں اسلامی حکومت نہیں ہے, اس دیش سے آیات کیا ہوا گوشت ہے, تو اس کے بارے میں کیا آدیش بیان کیا ہے شریعت نے ہماری. تو کہا گیا ہے کہ اگر بیچنے والا مسلمان ہے اور کسی ایسے دیش سے گوشت آیات کیا گیا ہو جو اسلامی نہ ہو, غیر اسلامی دیش سے گوشت آیات کیا گیا ہو, تو وہ گوشت نجس ہے, بھلے ہی مسلمان بیچ رہا ہے لیکن وہ گوشت پاک نہیں ہوگا. مگر صرف ایک صورت ہے جس سمے یہ گوشت پاک کہا جائے گا, اس کو پریوگ کیا جا سکتا ہے. وہ صورت یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا وشواس ہو کہ جو مسلمان, وہ مسلمان جس نے اس گوشت کو غیر اسلامی دیش سے آیات کیا ہے, اور یہ غیر اسلامی دیش سے آیاتت گوشت ہے, اس نے اس بات کے وشواس کے ساتھ, اس بات کے یقین کے ساتھ اس گوشت کو آیات کیا تھا کہ جس جانور کا یہ گوشت ہے وہ جانور شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے آدھار پر اس کا ذبح کیا گیا تھا. اگر اس پرکار کا ہے تو وہ گوشت حلال ہوگا, ورنہ گوشت حلال نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ بیچنے والا جو گوشت ہے وہ مسلمان ہے, لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ جس دیش سے اس گوشت کو آیات کیا گیا ہے وہ دیش اسلامی ہے نہیں ہے. अगर ना मालूम हो इस्लामी है या नहीं है तो वो भी गोश्त पाक कहा जाएगा और उसको उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद जो अवस्था थी वो ये है कि गोश्त जिससे हम ले रहे हैं वो गोश्त देने वाला मुसलमान नहीं है, या जिसकी दुकान से लिया जा रहा है वो मुसलमान नहीं है। तो इसके बारे में भी विभिन्न प्रकार के सूरतें पेश आती हैं। पहली तो ये कि जो गोश्त बेच रहा है या जिसके हाथों से गोश्त लिया जा रहा है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो जो गोश्त है वो इस्लामी देश से आयात किया हुआ है। जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया, इस्लामी देश से अगर आयात किया हुआ गोश्त है तो भले ही ये गैर मुसलमान बेच रहा हो, वो गोश्त पाक है और उपयोग किए जाने लायक है, हलाल है। दूसरी सूरत यहीं पे ये पेश आती है कि गोश्त बेच रहा है गैर मुसलमान, जिस देश से आयात किया गया है वो भी गैर इस्लामी देश से, ऐसी सूरत में वो गोश्त हराम है और नजिस है, उसका खाना सही नहीं है। मगर ये कि हमको इस बात का विश्वास हो कि जिस देश से ये गोश्त आयात किया गया है उस देश में उस जानवर का शरई एतबार से, शरई आधार पर तज़किया किया गया हो, उसको शरई बताए हुए कानून पर ज़िबा किया गया हो, अगर इस बात का हमको विश्वास होता है, यकीन होता है, तो वो गोश्त नजिस नहीं होगा बल्कि पाक रहेगा और उपयोग किए जाने के लायक रहेगा। और तीसरी सूरत ये पेश आती है कि इंसान बेचने वाला गैर मुसलमान है और हमको ये भी नहीं पता है कि वो जो गोश्त है वो इस्लामी देश से या गैर इस्लामी देश से है, तो इसके बारे में क्या कहा जाता है? अगर बेचने वाला गैर मुसलमान हो और हमको ये ना पता हो जिस देश से ये गोश्त आयात किया गया है वो इस्लामी है या गैर इस्लामी है, तो इसके बारे में हमारे फुकहा ये कहते हैं कि ऐसा गोश्त उपयोग करना सही नहीं है, ये गोश्त नजिस कहलाया जाएगा। तो ये तीन सूरतें हैं, यानी गोश्त को जिस समय हम उपयोग के लेते हैं उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि हमको बेचने वाला मुसलमान है या गैर मुसलमान है, इस्लामी देश से आया गैर इस्लामी देश से आया, तज़किया हुआ है या नहीं हुआ है, इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखा जाए गोश्त को लेते समय, ताकि हम नजिस चीज़ों के उपयोग से जहाँ तक संभव हो बच सकें। उसके बाद जो चीज़ आती है गोश्त के बाद, वो चीज़ें जो दूध से बनी हुई होती हैं, जैसे दही है, मक्खन है और लस्सी है, या इस प्रकार की चीज़ें और पनीर वगैरह, इस तरह चीज़ें हैं जो दूध से बनी होती हैं, तो इसके बारे में क्या आदेश है? अगर दूध से बनी हुई चीज़ें हलाल गोश्त जानवर से ली गई हों और वो जानवर ज़िंदा हो, तो चाहे उस चीज़ को बनाने वाले मुसलमान हों या गैर मुसलमान हों, चाहे वो मुसलमान मार्केट से लिया गया हो चाहे गैर मुसलमान मार्केट से लिया गया हो, चाहे इस्लामी देश का हो चाहे गैर इस्लामी देश का हो, अगर वो जानवर हलाल गोश्त है और जीवित अवस्था में उससे चीज़ें ली गई हैं तो वो हलाल होगा, उसको उपयोग किया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इसी में एक और मसला आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो अंग है वो इंसान या हैवान से उसकी जीवित अवस्था में उससे जुदा हो जाए, उससे अलग हो जाए, तो उसके बारे में क्या आदेश है? तो इसके बारे में वही आदेश है जो हमने पहले बताया था, वो ये कि अगर वो अंग जीवन रखने वाला है तो वो अपने शरीर के हिसाब से जोड़ा जाएगा, यानी अगर जीवन रखने वाला है तो नजिस होगा, अगर जीवन रखने वाला नहीं है तो पाक होगा, इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। इसमें एक अंतिम चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, ताकि इस कानून को, इस नियम को अगर हाथ में रखा जाएगा तो बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको हम खुद हल कर सकते हैं, वो ये है कि इस संसार की हर चीज़ पवित्र है, इस संसार में कोई चीज़ भी ईश्वर ने अपवित्र नहीं बनाई, मगर ये कि वो 11 चीज़ें जो हमने आपको बताई, यानी वही पेशाब पखाना, कुत्ता, मनी, मुर्दार, ये सब जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब पवित्र हैं, इस संसार में कोई भी चीज़ अपवित्र नहीं है। और यहीं पर एक चीज़ और बता दूं, जिस चीज़ के बारे में हमें संदेह हो, शंका हो, शक हो कि ये चीज़ पवित्र है या अपवित्र है, तो हमारी शरीयत ये कहती है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको संदेह है तो उस चीज़ को पाक माना जाएगा, वो चीज़ अपवित्र नहीं होगी। उसके बाद इन अपवित्र चीज़ों में जो हमने आपको पहले बताया था कि अपवित्र चीज़ें 11 होती हैं, उसमें हमने आपको पेशाब और पखाने से संबंधित मसलों को बयान किया, मुर्दार से संबंधित मसलों को बयान किया। इसके बाद जो चीज़ आती है वो मनी या वीर, जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं, इससे संबंधित मसला है। तो शरीयत ये कहती है, इस्लाम हमारा ये कहता है कि वीर चाहे वो इंसान की हो चाहे जानवर की हो, लेकिन शर्त ये है कि वो जानवर खून जहिंदा रखता हो, यानी वही उसका अगर उसको शरीर को काटा जाए तो उसका खून उछल के निकले, यानी दाब के साथ निकले, फिशार के साथ निकले। अगर ऐसा है तो उसकी मनि, उसकी वीर नजिस है। और उसके बाद ये कहा गया है वो जानवर, वो हैवान जो खून जहिंदा नहीं रखते हैं उनके बारे में भी एहतियात वाजिब ये है कि उनकी मनि और उनकी वीर से भी दूरी बनाई जाए, उनसे भी बचा जाए, तो ये बेहतर है। तो ये वीर से संबंधित मसला हुआ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा कायदा है कि अगर हैवान चाहे हलाल गोश्त हो या हराम गोश्त हो अगर खून जहिंदा रखता है तो नजिस है उसकी वीर, और इसी प्रकार इंसान की वीर पूरी तरीके से नजिस है, इसको किसी भी सूरत से पवित्र नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है अपवित्र चीज़ों में, वो है खून की, कि खून भी अपवित्र चीज़ों में होता है, यानी इंसान के अंदर या हैवान के अंदर जो खून है वो अपवित्र है। खून के बारे में कहा यह गया चाहे वो इंसान का खून हो या हैवान का खून हो, शर्त ये है कि अगर इंसान वो हैवान जो वो जानवर जिसका खून है अगर खून जहिंदा रखता है तो उसका खून अपवित्र है, जैसे मुर्गी है या जो हराम गोश्त जानवर में बिल्ली है या बकरी है, इस तरह के जितने भी जानवर हैं अगर क्योंकि इनको खून जहिंदा रखते हैं लिहाजा इनका खून नजिस होगा, अगर किसी इंसान के शरीर या कपड़े पर लग जाता है तो उसको पवित्र करना आवश्यक होगा। लेकिन वो जानवर जिनके अंदर खून जहिंदा नहीं होता है, यानी इनको अगर काटा जाए तो खून उछल के नहीं निकलता है, जैसे सांप है, सांप के अंदर खून जहिंदा नहीं होता है, या मछली है, मछली के अंदर खून जहिंदा नहीं होता है, तो वो जानवर जिनके अंदर खून जहिंदा नहीं होता है उनका खून अगर काटने के बाद निकले और कहीं लग जाए या ऐसे ही ना लगे, सिर्फ खून के बारे में अगर बहस हो तो खून उनका पवित्र है, उसको नजिस नहीं कहा जाएगा। और तीसरी बात जो ये ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, ये हम अपने आम जीवन में भी देखते हैं इस बात को, कि हम कभी कभी अपने किचन में होते हैं या हमारी महिलाएं जो किचन में होती हैं उनके साथ ये ज़्यादा पेश आता है, वो ये है कि कभी कभी अंडा तोड़ा जाता है उसके अंदर खून निकलता है, थोड़ा सा खून है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है, क्या आदेश है शरीयत का। तो कहा यह गया है कि एहतियात वाजिब ये है कि अगर किसी अंडे में खून है तो उस अंडे को खाने से बचना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर खून इतना कम है कि अगर उस खून को जर्दी के साथ फेंट दिया जाए तो खून गायब हो जाए, यानी खून दिखाई ना दे, तो अगर खून को जर्दी के साथ फेंट दिया जाता है और खून दिखाई नहीं देता दिया और वह खून दिखाई नहीं देता है, समाप्त हो जाता है, तो उस जर्दी को खाने में कोई हर्ज नहीं है, उस जर्दी को खाया जा सकता है। इसी के बाद एक और मसला जो हमारे, ये भी मसला हमारे आम जीवन में बहुत ज़्यादा पेश आता है, वो ये है कि कभी कभी हम पेस्ट करते हैं या ऐसे ही किसी के दांतों में बीमारी है, कीड़ा वगैरह लग गया, तो कभी कभी मसूड़े से खून निकलता है, तो मसूड़े से जो खून निकल रहा है उसके बारे में ईश्वर का क्या आदेश है, हमारी शरीयत क्या कहती है। तो उसके बारे में मसला ये है कि मसूड़े से निकला हुआ खून अगर इतना कम हो कि वो थूक में मिल जाए और समाप्त हो जाए, यानी उसकी मिकदार, उसकी मात्रा इतनी कम है कि थूक में मिलने के बाद समाप्त हो जाता है, तो अगर ऐसा होता है तो वो थूक जो खून से मिला हुआ है उसको नजिस नहीं कहा जाएगा और उस थूक को निगलना भी जायज़ होगा। इसमें खून से संबंधित कुछ और मसले हैं जो हम आपको अपने अगले प्रोग्राम में बताएँगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।